मौसम की बहार की जो आमद होती है डॉक्टर साहब, पहले
जी
सलाम अर्ज करती हूँ आपकी खिदमत में
वालेकुम
और
सलाम,
खुशामदीद
बहुत
कहती
बहुत
हूँ
शुक्रिया,
जी।
बहुत
डॉक्टर साहब, मैं यहाँ से बात शुरू करूँगी कि मौसम में बहार की आमद जब होती है तो मैं देखती हूँ बहुत से लोग जो हैं वो इसके बजाय वो फूलों को जाके सूंघे, उनके हाथ में टिश्यू पेपर होता है, वो टिश्यू पेपर सूंघ रहे होते हैं हमेशा। क्या
जी
अपनी जो है उनकी नाक जब बह रही होती है इस वजह से, एलर्जीज की वजह से, क्या है ये, क्यों क्यों होता है?
असल में जब बाहर का मौसम होता है तो इसमें जो पोल होते हैं इससे पोलन्स निकलते हैं,
बिल्कुल।
और इसको हम जो पोलन्स कहते हैं, और ये पॉलिनेशन का एक प्रोसेस है जो एक पोल से पोलन्स गिरते हैं और दूसरे पोल पे गिरते हैं, एक
बिल्कुल
क्रॉस पॉलिनेशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होती है, और इससे ये जो फ्रूट्स बनते हैं
बिल्कुल।
तो एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन ये जो पोलन्स गिरते हैं ये बहुत ज़्यादा तादाद में गिरते हैं, और ये जो हवा के ज़रिए पूरे इलाके में ये फैल जाते हैं, और ये पोलन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ये जो हर फूल का पोलन जो होगा इससे एलर्जी ही होगी,
एलर्जी होगी।
लेकिन कुछ पोलन ऐसे है जिसमें ये सलाहियत होती है कि उससे एलर्जी ही हो जाए। तो ये जो आपने कहा कि लोगों के अक्सर ये मसले होते हैं और एलर्जी होती है, तो ये जो पोलन होते हैं, पोलन जो हवा के ज़रिए उड़ते हैं, तो ये पोलन आगे जाके जो सांस की नाली होती है या जो नाक के ज़रिए अंदर चले जाते हैं तो इससे एलर्जी हो जाती है, तो इसको हम पोलन एलर्जी कहते हैं। तो ये वही बीमारी है जिसमें आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या सूरत हो सकती है, क्या मसले हो सकते हैं
यानी हम
पोल।
खास तौर पर पॉलन एलर्जी के बारे में आज बात करेंगे
जी जी
जी। तो
बिल्कुल
डॉक्टर साहब, यहाँ से मैं शुरू करती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि हर इंसान जो है, यानी सब जो है यहाँ पे, उन सबको पॉलन एलर्जी हो जाए इस मौसम में या नहीं, खास ही अफराद इसमें मुब्तला रहते हैं?
ये लाजमी नहीं है कि हर इंसान को पोलन एलर्जी हो जाए, जिस तरह मैंने कहा कि हर पोलन में ये सलाहियत नहीं
नहीं
होती कि
होती,
वो एलर्जी काज कर ले, कुछ पोलन होते हैं उसमें ये सलाहियत
सलाहियत
होती है,
होती
और
है।
कुछ अपराध होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ये जो पोलन होते हैं इसके लिए एक एंटीजन ये काम करते हैं, और ये इसको इरिटेट करते हैं, जिनका जो इम्यून सिस्टम होता है इसके लिए ये सेंसिटिव होता है, तो जब वो सांस के ज़रिए उन लोगों के ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उसके ज़रिए अंदर चले जाती है, तो उन्हीं खास लोगों को ये एलर्जी हो जाती है।
ठीक है।
तो आम लोगों को ये नहीं होती, कुछ खास लोग होते हैं, कुछ खास किस्म के अपराध होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं पोलन्स के लिए, उनके ये मसले हो जाते हैं फिर।
यानी खास किस्म के पोलन से खास किस्म के अफराद को
जी जी
एलर्जी हो सकती है। डॉक्टर साहब, चलते हैं हम इस तरफ के, यानी अगर किसी को ये एलर्जी हो रही है तो कौन सी अलामत हम देखेंगे उसमें?
जो फोलन एलर्जी है इसकी जो बुनियादी अलामत है ये रिस्पायरेटरी ट्रैक जो होता है या जो हमारे सांस लेने का ये जो निज़ाम है इसमें ये मसले कर सकते हैं, और जिसकी जो सबसे बड़ी अलामत है और सबसे मसले जो है ये इसमें पूरा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है,
ठीक है।
और इसमें ये जो बुनियादी बात है वो दो तीन किस्म की है कि जो नाक से पानी का आना
बिल्कुल।
और आँखों से पानी का आना, और ये चेहरे का सुर्ख हो जाना, आँखों का सुर्ख हो जाना, और अक्सर इस तरह भी होता है कि जो चेहरे पे ख़ारिश होती है, इरिटेशन होती है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की सूरतें हैं जिसको लेके हम ये कह सकते हैं कि इसको पोलन एलर्जी हो गई
हो
है,
गई
और
है।
इसके साथ ये जो अक्सर रेशे होते हैं ये जो बाद में जाके कुछ और मसले कर जाते हैं, और ये जो रेशे होते हैं ये जो सांस की नली होती है उसके अंदर ही चली जाती है, तो पूरा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो इरिटेट कर जाता है, उसमें मसले कर जाते हैं ये, और ये जो नाक बहना और ये सोजश होती है,
बिल्कुल।
नज़ला ज़ुकाम और खांसी आना, ये मुख्तलिफ किस्म की सूरत है जिसको हम ले जाके ये कह सकते हैं कि इसको पोलन एलर्जी हो गई
की
है।
अलामत हो
जी
सकती
जी
हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी कि अब ये अगर हम पोलन एलर्जी की बात कर रहे हैं तो इसमें ये देखिए, हर एलर्जी का या हर एक बीमारी का जो मैं बात करूँ, एक दौरानिया होता है, कुछ खास दिन तक वो बीमारी या एलर्जी रहती है और उसके बाद जो है वो चली जाती है। इसका पीरियड कितने दिन तक होता है तकरीबन?
ये डिपेंड करता है कि अक्सर जो बाहर का सीज़न होता है जब तक ये पोलन्स हवा में होते हैं, या जब तक ये जो पोल पतकाई सिस्टम होता है जो सीज़न होता है, जब तक ये पोलन होते हैं और ये पोलन इनहेल करते हैं लोग सांस के अंदर चले जाते हैं, तो
सही।
लाजमी बात है, ज़रूरी बात है कि ये जो एलर्जी होगी इसका असर होगा, लेकिन ये जो एक ख़ास किस्म का साइकिल होता है और ये भी वही पोलन्स पे डिपेंड करता है कि जब तक
अच्छा,
ये हवा में होंगी और हम इसको सांस के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं तो ये एलर्जी होगी।
होगी जरूर।
जी
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 हाँ, एलर्जी क्या किसी खास एज के ग्रुप के लोगों को होती है या नहीं, किसी को भी हो सकती है? बहुत शुक्रिया सकीना जी।
जी जहाँ तक ये हेरिडिटी की बात है तो कुछ रेयर चांसेस इस तरह के है कि जो एलर्जिक पेशेंट होगा उसके पेरेंट्स में कुछ इसके चांसेस
हो
होंगे,
सकते हैं। अच्छा
और जो दूसरे एज ग्रुप का आपने बताया तो ये डिपेंड करता है एक्सपोज इंडिविजुअल पे, इसके लिए बच्चों या बड़ों वाली ये बात नहीं है, लेकिन जो एक्सपोज इंडिविजुअल होते हैं जो बाहर काम करते हैं या जो बाहर के मौसम में बाहर घूमते फिरते हैं, या जो कुछ ऐसे किस्म के लोग होते हैं जो वर्कर्स होते हैं जो खेतों में काम करते हैं, या जो मुख्तलिफ ऐसे चीज़ों से इनका ताल्लुक होता है जिस पे पोलन्स गिरते हैं या
बिल्कुल।
जिस पे पोलन्स होते हैं, तो ये जो लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, क्योंकि उनका जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बाहर, जो एनवायरनमेंटल जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है।
बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि देखिए अक्सर मैंने देखा है छोटे बच्चों में भी ये मसला बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, और जैसा सवाल भी था कि किस एज ग्रुप से, मैंने देखा है छोटे बच्चे मुबतला होते हैं तो उनको तुम डायरेक्टली जो है दवाइयों पर घसीट कर ले आते हैं, भाई दवाई खाओ तभी तबीयत ठीक हो जाएगी, क्या किया जाए? नहीं दवाई से स्टार्ट किया जाए, नहीं कोई और तरीका है जिससे हम उनको बचा सकते हैं?
बच्चों के लिए तो सबसे बेहतर तरीका ये है कि मास्क लिया जाए,
बिल्कुल
और बाहर जाते वक्त या जो काम के लिए लोग जाते हैं या बच्चों के लेके बाहर जाते हैं तो मास्क लिया जाए। मास्क प्रोटेक्शन देती है, जो पोलन्स होते हैं, जो हवा में पोलन्स
अंदर ना जा
उड़ते हैं
सके।
वो अंदर ना चले जाए सांस की नाली में, हवा की नाली में।
सही।
और इसके अलावा जो आपने कहा कि इसके लिए और क्या किया जाए, तो अगर ये एलर्जी वाली सूरत ये काफ़ी टाइम के लिए है, लंबे अरसे के लिए है, तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। इसके
अच्छा।
लिए हम एंटी हिस्टामिनिक जो मेडिसन होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं वो हम लेते हैं।
लेते हैं।
लेकिन बचाव के लिए ये भी मुख्तलिफ और भी तरीके हो सकते हैं, जिस तरह गीला कपड़ा लेके इसको मुंह पे और नाक पे लगाया जाए, और इसके अलावा वाजलेन लेके जो नाक के अंदर की जो लेयर होती है उससे एक कोट दिया जाए।
अच्छा।
फिर जो पोलन्स होते हैं इसके अंदर ये जो चिपकने की सलाहियत नहीं होती, या इसके लिए हम जैतून का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, जो अंदर की लेनिंग होती है नाक की
नाक के, ठीक
उसके
है।
ये लगा के फिर पोलन्स नहीं चिपकते, क्योंकि जो जितने भी वायरस होते हैं ये इधर ठहर जाते हैं नाक के
अच्छा
अंदर और फिर ये मसले कर जाते हैं। तो
बिल्कुल
इससे ये मुख्तलिफ किस्म के तरीके इख्तियार करके हम अवॉइड कर सकते हैं।
अवॉइड कर सकते हैं। और यहाँ
जी
पर हम देख रहे हैं साथ साथ तस्वीरें डॉक्टर साहब
जी
लेकर
जी
आए हैं, और बड़े खूबसूरत मास्क लगाए हैं वैसे
मास्क
इन्होंने।
लगाए हुए हैं और इससे काफ़ी हद तक ये बचाव कर सकते हैं हम।
जी हाँ, लेकिन इस बात की तरफ हम इशारा करते चलें, जब हम बात करते हैं मास्क की तो कोई स्टैंडर्ड मास्क हो, ऐसा
जी
ना हो कि कोई भी मास्क जो आपको मिल रहा है जो अभी आम तौर पर बाजार पर दस्तियाब है आप वो लगा लें, जो बहुत ही हल्की सी इसकी लाइन होती है, बल्कि आप एक स्टैंडर्ड जो है फार्मेसी से जाके लीजिए मास्क और फिर लगाइए तो आपको जो है काफी हद तक आप बच सकते हैं। जी चलते अपने मौसम की तरफ करिए, अपने मौजू की तरफ हम चलते हैं डॉक्टर साहब। हम बात कर रहे हैं मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में जो मुख्तलिफ मौसम में हमें होता है, खास तौर मौसम बाहर की बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब अब यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट के हवाले से हम बात करेंगे, इसके ट्रीटमेंट का दौरान या कितना होता है, कंडीशन पर डिपेंड करता है, या कंडीशन इस तरह भी होती है कि हर किसी की एलर्जी जो है, मिसाल के तौर पर अगर मुझे एलर्जी हुई है तो मेरी एलर्जी जो है वो सकीना की एलर्जी से डिफरेंट है, यानी मैं बात करूँ सीवियरिटी की, किस हद तक
जी
यानी फर्क रहता है इसमें?
ये जो एलर्जी के टाइप्स है ये डिपेंड करता है कि जो बंदा किस चीज़ के लिए सेंसिटिव है, क्योंकि सब लोग एक चीज़ के लिए सेंसिटिव
सेंसिटिव
नहीं
नहीं
हो
होते
सकते।
सही।
मुख्तलिफ किस्म के पोलन्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के गास्त है, या मुख्तलिफ किस्म के दरख्त है, मुख्तलिफ किस्म की पूल्स है, तो एक बंदा एक किस्म के पोलन के लिए सेंसिटिव है, एलर्जिक है, दूसरा बंदा दूसरे किस्म के पोलन के लिए एलर्जिक है। तो ये डिपेंड
बिल्कुल
करता है इंडिविजुअल पे और टाइप ऑफ पोलन पे,
पोलन पे।
ये किस तरह का पोलन है और वो जो इंडिविजुअल है इसके लिए एलर्जिक है कि नहीं है। और जो दूसरी सूरत है या जो दूसरी आपने कहा कि जो टाइम होता है कितने टाइम के लिए होता है, तो ये शुरू भी मैंने जिक्र किया कि ये डिपेंड करता है कि जो बाहर का सीज़न होता है
उस पर।
उसमें जब तक ये पोलन्स होंगे तो लोगों के ये मसले होंगे, और जैसे जैसे ये जो पोलन वाला सीज़न है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा तो ये लोगों के ये मसले कम होना शुरू हो जाएंगे।
सही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पर जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं यानी एलर्जी का मसला लेकर के, भाई हमें जो है अब इस मौसम में एलर्जी हो गई है, तो फिर क्या करते हैं आप लोग? उसे डायरेक्टली दवाई देते हैं या बोलते हैं कि नहीं ठहरो पहले घर पे जाकर जो है अभी मुख्तलिफ जो है ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, होम रेमेडीज होती है, उनका इस्तेमाल किया जाए, क्या किया जाता है पहले?
सबसे पहले बात तो ये है कि इसको डायग्नोज किया जाए कि एलर्जी की किस्म क्या है,
क्या है
किस टाइप की
और किस
एलर्जी है
सीवियरिटी पे?
जी। और ये जो एलर्जी की डायग्नोसिस करते हैं ये दो तरीक़ों से करते हैं, एक तो ब्लड टेस्ट होता है, लेकिन इसमें कुछ ये डिटेल में नहीं बताते कि किस किस्म की एंटीबॉडीज़ अंदर प्रोडक्शन हो
हो
रही
रही
है
है।
बॉडी के अंदर, क्योंकि ये जो एलर्जी होती है इसमें जो पोलन्स होते हैं एज एंटीजन काम करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जब ये चला जाता है तो एज एंटीजन काम करता है, और इसके बरखिलाफ़ ये एंटीबॉडीज़ बनते हैं। तो ब्लड टेस्ट में हम वो एंटीबॉडीज़ देखते हैं कि किस किस्म की एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज़ डेवलप हो रहे हैं। और दूसरी सूरत यह है कि ये जो स्किन टेस्ट होता है इसके लिए मुख्तलिफ किस्म की सॉल्यूशंस अवेलेबल है, और जो प्रिक लगाते हैं फिर वो सॉल्यूशन डालते हैं तो इसके ज़रिए पता चल जाता है कि ये कौन सी किस्म
किस
की
नोयत का एलर्जी
एलर्जी
है?
है।